नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया, देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज हुआ समापन। यात्रा के अंतिम दिन पटना और नालंदा जिले में विभिन्न विकास योजनाओं की दी सौगात। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, राज्य में पंचायत चुनाव नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही होंगे। और पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ कल प्रदेश में मनाया जाएगा रामनवमी का त्योहार। सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में है। सभी विक्रय केंद्रों पर पर्याप्त मात्रा में ईंधन है और देश में कहीं भी पेट्रोल, डीजल या एलपीजी की कमी नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों से जानबूझकर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से गुमराह नहीं होने का अनुरोध किया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि भारत को आज दुनिया भर के 41 से अधिक आपूर्तिकर्ताओं से कच्चा तेल प्राप्त हो रहा है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय रिफाइनरी 100% से अधिक क्षमता पर चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के साथ पश्चिम एशिया की ताजा स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगी। आधिकारिक न्यूज एजेंसी ने बताया है कि कल शाम 6:30 बजे होने वाली इस बैठक में चुनाव आचार संहिता के कारण जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारत ऊर्जा संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और अपने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रबंध कर रहा है। श्री रिजिजू ने बताया कि भारतीय जहाज हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं। यह भारत की मजबूत कूटनीतिक पहुंच और वैश्विक स्थिति को दर्शाता है।
इफ आवर शिप्स आर पासिंग थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज,
हमारे कुछ जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो सभी पक्षों से बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इसराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की है। भारत चुनौतियों के बावजूद बहुत ही बेहतर स्थिति में है।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि घरेलू गैस की समस्या इस समय एक वैश्विक समस्या है। उन्होंने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हमारा देश भी इससे प्रभावित है। श्री कुशवाहा ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में सभी राजनीतिक दल एक साथ आकर राष्ट्र के हित में खड़े होते हैं।
यह समस्या पूरी दुनिया की समस्या है। स्वाभाविक रूप से अपना देश भी इससे प्रभावित होगा और ऐसी स्थिति जब आती है तो सभी राजनीतिक दल के लोग एक साथ मिलकर देश के हक में खड़ा होते हैं। यह तो परंपरा रही है, इस दृष्टि से कोशिश हो रही है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य के सुदूर क्षेत्रों से राजधानी पटना 6 घंटे में पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में ही पूरा कर लिया गया, अब इसे घटाकर 5 घंटे किया जा रहा है। श्री कुमार ने नालंदा जिले के बिहार शरीफ में जनसंवाद करते हुए कहा कि राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का वातावरण है।
जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले वाली जो सरकार थी वो लोग तो कोई नहीं, सब गड़बड़ किए हुए था, गड़बड़ था। पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था। तो शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा, हम लोगों ने तो बहुत जल्दी सब काम को शुरू किया। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम, भाईचारा और शांति का माहौल है।
मुख्यमंत्री ने नालंदा जिले में 810 करोड़ रुपए की लागत वाली 216 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। वहीं श्री कुमार ने पटना जिले में 1056 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने पटना के बापू सभागार में जनसंवाद करते हुए कहा कि जातीय जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पीछे रह गए समूहों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
2023 में एक बार क्या हुआ था जाति आधारित गणना, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए और उसमें सब है, और उसके लिए हम लोगों ने कहा कि इनके लिए भी सब काम करना है। तो पहले तो हम लोगों ने कहा 2 लाख रुपया, अब 2 लाख रुपया से भी ज्यादा किया जाएगा। अब तक इसमें जो 94 लाख है उसमें से 83,20,000 परिवारों का रोजगार योजनाओं में जोड़कर राशि देना शुरू किया गया है, और जो बच गया है उसके लिए इसके बाद अगले महीने राशि देना शुरू कर दिया सबके लिए।
इस दौरान श्री कुमार ने विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा का आज समापन हो गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार प्रगति पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। समृद्धि यात्रा के 5वें चरण की समाप्ति के अवसर पर पटना के बापू सभागार में सभा को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने सुशासन और विकास की सोच के साथ प्रदेश का मान बढ़ाया है।
आपने विकास भी किया और सामाजिक न्याय का भी काम किया साथ, ये है नीतीश कुमार। इसलिए आज मैं फिर से इनको बधाई देता और शुभकामना देता हूँ कि आप इसी तरह मार्गदर्शन और नेतृत्व देते रहे। एनडीए पूर्ण रूप से एक होकर नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं और आगे भी इनके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलता रहेगा।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यों से बिहार वासियों को विकास के उत्सव का मौका दिया है। श्री नवीन ने पटना में समृद्धि यात्रा के दौरान जनसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य को निराशा के दौर से बाहर निकालकर विश्वास और विकास से जोड़ दिया है।
मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने समृद्धि यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार में एक उत्सव का वातावरण आपने निर्माण किया है, और बिहार आप विकास के इस पैमाने पर जहां पर आपने लाके खड़ा किया है, यहां से जो आगे का सफर है वो इसी उत्सव के वातावरण से बिहार विकास के पथ पर निरंतर चलता रहेगा।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही कराए जाएंगे। कैमूर में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रकाश ने कहा कि आरक्षण रोस्टर को अपडेट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य शुरू हो जाने के कारण परिसीमन की प्रक्रिया अभी नहीं होगी।
इस चुनाव में बदला जाना है तो सबसे पहले आरक्षण का रोस्टर आ जाएगा नया, कि 10 वर्ष पूरे हो गए हैं तो हमें बदलाव करने के लिए, तो उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। परिसीमन का कार्य अभी नहीं किया जा सकता है। पूरे देश में जनगणना का कार्य शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन भी उसका आ गया है जनवरी के महीने में। जब एक बार जनगणना का काम पूरे देश में पूरा हो जाएगा, नए उसके आंकड़े आ जाएंगे, आंकड़े आने के बाद लोकसभा का भी परिसीमन का कार्य होना है, विधानसभा का भी होना है, और जब आंकड़े आ जाएंगे तो उसके बाद पंचायत के लिए भी हम लोग उसके ऊपर विचार करेंगे।
सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए बड़े और ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। श्रेयसी सिंह आज पटना के बिहटा स्थित IIT इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश अनुसार और अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सोच को बढ़ावा देते हुए हम लोगों ने यह तय किया है कि IIT के इंक्यूबेशन सेंटर के साथ बिहार सरकार हर वक्त कदम से कदम मिलाकर चलेगी, और आपको चाहे आधारभूत संरचनाओं की जरूरत हो, फंड की जरूरत हो या किसी भी एस्पेक्ट की आवश्यकता हो, बिहार सरकार आपको आपके घर तक, आपको अपने सपनों को सच बनाने के लिए, जो बिहार के सपने हैं उनको सच बनाने के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार है।
चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। पटना के प्रसिद्ध शक्तिपीठ पटन देवी सहित प्रदेश के सभी मातृशक्ति मंदिरों पर भक्तों की सुबह से ही लंबी कतार लगी रही। कई पूजा पंडालों में आज कन्या पूजन का भी आयोजन किया जा रहा है। रामनवमी का त्योहार कल प्रदेश भर में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा झांकी निकाली जाएगी। पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर का पट दर्शन के लिए आज रात 2 बजे से खोल दिया जाएगा। इधर रामनवमी को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने बताया है कि सुरक्षा बलों की 45 अतिरिक्त कंपनियों की तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि सभी प्रमुख स्थानों पर CCTV कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी विशेष नजर रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि भगवान राम का जीवन हमें समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए प्रेरित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा है कि त्याग, तपस्या और संयम से परिपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन हर परिस्थिति का पूर्ण शक्ति से सामना करने की प्रेरणा देता है।
सबुराम मानवता का प्रतिनिधित्व करते, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए हैं।
इधर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार ने भी प्रदेशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम के असीम कृपा से सबके जीवन में सौहार्द, मर्यादा और संस्कार के फूल खिले, यही कामना करते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर सक्रिय होने के कारण प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम में बदलाव आया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ भागों में तेज रफ्तार के साथ हवा चलने से तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, भागलपुर समेत राज्य के दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में कई स्थानों पर वज्रपात के साथ आंधी बारिश की संभावना है। वहीं राज्य के उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। कटिहार के सांसद तारिक अनवर ने पिछले दिनों ओलावृष्टि से सीमांचल क्षेत्र के किसानों को हुई फसल क्षति के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मुआवजे की मांग की है। श्री अनवर ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि प्रभावित किसानों को फसल क्षति मुआवजा का भुगतान तत्काल किया जाए। उन्होंने फसल बीमा दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने और ऋण वसूली पर रोक लगाने की भी मांग की है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आज प्रदेश भर में एनीमिया से ग्रसित महिलाओं के उपचार के लिए विशेष अभियान की शुरुआत की। श्री पांडे ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से फेरिस कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन थेरेपी अभियान का शुभारंभ किया। इसके तहत विभिन्न जिलों जहानाबाद, अरवल और अन्य जिलों से भी FCM इंजेक्शन कार्यक्रम के तहत गर्भवती एनीमिया से प्रभावित महिलाओं को टीका दिया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दोहराया, देश में पेट्रोल, डीजल और LPG आपूर्ति की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित और नियंत्रण में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज हुआ समापन। यात्रा के अंतिम दिन पटना और नालंदा जिले में विभिन्न विकास योजनाओं की दी सौगात। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा, राज्य में पंचायत चुनाव नए आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही होंगे। और पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ कल प्रदेश में मनाया जाएगा रामनवमी का त्योहार। सुरक्षा के किए गए व्यापक प्रबंध, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।